نصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معذرت چاہتا ہوں میں تھوڑا لیٹ ہو گیا آج. اگر ہم مادی دنیا کو دیکھیں, علمی دنیا کو دیکھیں یا روحانی دنیا کو, تو ایک چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ تحقیق اور جستجو کرنے والے لوگ رب تعالیٰ نے بہت کم تعداد میں پیدا کیے ہیں, جبکہ تقلید کرنے والے لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے. دیکھنے میں اور سننے میں تو شاید یہ آسان لگتا ہے کہ ہم ان جستجو اور تحقیق کرنے والے لوگوں کی تقلید کرتے جائیں, وہ آسان کام ہے. لیکن جتنا بظاہر وہ آسان دکھائی دیتا ہے, در حقیقت اتنا ہے نہیں. تقلید میں بھی انسان کا علم, عقل اس کی راہ کھوٹی کرتی رہتی ہے, پاؤں پھسلتے رہتے ہیں انسان کے. در حقیقت وہ پاؤں پھسل نہیں رہے ہوتے, وہ انسان کے اپنے جو خیالات ہیں, جو انسان نے اپنے ذہن میں بت گھڑ لیے ہیں, جب وہ اس کے مطابق چیزیں ثابت نہیں ہوتی تو انسان کہتا ہے کہ شاید یہ غلط ہے. غلط تقلید نہیں ہوتی, بلکہ غلط انسان کے اپنے خیالات اور اپنے مزاج اور اپنے تجربات کے پیش نظر جو اس نے بت گھڑے ہیں وہ اسے غلط کرتے ہیں. تقلید کی بہترین ایگزامپل میرے علم میں اس سے بہتر نہیں جو مولانا روم نے بتائی. یہ بالکل ایسا ہے کہ دو آدمی ہیں, ان کو پیاس لگی ہے, ان میں سے ایک بینا ہے, اسے دکھائی دیتا ہے, دوسرا دیکھ نہیں سکتا. تو اب جو دیکھ نہیں سکتا اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ پانی کس طرف مجھے مل جائے گا, یا دور سے پانی کی جھلک اسے دکھائی نہیں دیتی, تو بیچارہ پیاس میں مارا مارا ادھر ادھر پھرتا ہے. اس کے برعکس جس کو اللہ نے بینائی عطا فرمائی ہے, وہ دور سے پانی کی جھلک دیکھ کے اس ڈائریکشن میں جاتا ہے. تو اگر وہ آدمی جو دیکھنے سے آ رہی ہے وہ بینا شخص کی پیچھے چل پڑے, اس کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑے, تو وہ اس ندی پر جا پہنچے گا جہاں پانی, تازہ پانی ٹھنڈا بہ رہا ہے. اب وہ راستہ جو وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے طے کر رہا ہے نابینا, اس کو پانی دکھائی نہیں دیتا, تو وہ بار بار کہتا ہے کہ ادھر پانی ہے بھی یا تم ایسے لیے جا رہے ہو مجھے. بار بار ایک سوال پوچھتا ہے کہ پانی ابھی کتنی دور ہے. تو جس کو اللہ نے بینائی عطا فرمائی ہے, جو دیکھ سکتا ہے, وہ اسے تسلی دیتا ہے کہ زیادہ دور نہیں, وہ سامنے دکھائی دے رہا ہے, تم میرے ساتھ چلے آؤ. تو باوجود اس تسلی کے, اس نہ دیکھنے والے آدمی کی سوالات جاری رہتے ہیں, حتیٰ کہ ندی پہ جا پہنچتا ہے. تو ندی پر پہنچ جانے کے باوجود اس کو پانی دکھائی نہیں دیتا, और वो फिर भी उस देखने वाले से सवाल करता है, पानी कहाँ है? और देखने वाला जिसको अल्लाह ने जिसकी बिनाई रखी है भी, वो उसे तसल्ली देता है कि पानी के बिल्कुल किनारे पर खड़े हो, तो झुककर पानी का बर्तन भर लो इसे। तो जब तक वो अपना डोल पानी में नहीं डालता है, उस वक्त तक नाबीना शख्स को पता नहीं चलता कि मैं पानी तक पहुंच गया। अलबत्ता जब वो डोल उसमें डाल के उस डोल के पानी को भर के बाहर निकाल लेता है, तो उसके वजन से और उसके गीले हो जाने से उसको अंदाजा होता है कि यस, मैंने पानी भर लिया। तो तकलीद की ये मिसाल मेरे नजर में बेमिसाल है। इंसान तकलीद करता है क्योंकि उसे दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा, तो शकूक उसके जहन में बार बार सर उठाते हैं। रास्ते में जो मुश्किलात आती हैं उससे वो बददिल होता है, रंजो गम उसको आते हैं वो बददिल होता है, भूख प्यास सताती है तो बददिल होता है। इसलिए कि दिखाई उस गरीब को कुछ नहीं दे रहा, वो सिर्फ तकलीद कर रहा है। तो ये जो रंजो अलम है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, ये तो सबको आते हैं। और हर उस शख्स को बहुत ज्यादा आते हैं जिसको रब ताला नवाज रहा होता है। तो अगर तकलीफ करने वाले की समझ में ये आ जाए कि ये नाकामियां, ये फेलियर्स, ये दुख, ये गम, ये बीमारी दर हकीकत ये उसको इसलिए आ रही है कि वो उसके जरिए से महमीज लेता है, उसको महमीज करती हैं ये चीजें। जैसे हम घोड़े पर बैठते हैं तो उसको एड़ी लगाते हैं, ये महावरतन एड़ी लगाना कहते हैं, तो घोड़ा दौड़ने लगता है, उसको उर्दू में महमीज कहते हैं। वो महमीज का काम कर रही है हमारे लिए, लेकिन हम अपनी तकलीफ में उसको ये समझते हैं कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है। एक वाइज थे, वो मंबर पर बैठ के आमतौर पर मुशरकीन और कुफार के लिए भी अल्लाह की रहमत की दुआ करते थे, बख्शिश की उनकी दुआ करते थे। तो कुछ अकलमंद लोगों ने उनसे कहा कि हजूर, आप ये मेंबर पर बैठ के उनके लिए रहमत की और बख्शिश की दुआ करते हैं, तो ये शरण गलत है। किसी मुशरिक या काफिर की मगफरत की दुआ नहीं की जा सकती। तो उन वाइज ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा कि उन पर रहमत की मैं दुआएं इसलिए नहीं करता कि वो काफिर हैं या मुशरिक हैं, बल्कि मैं जज्बा एहसान मंदी के तहत उनके लिए दुआ करता हूं, इसलिए कि वो राह से भटके हुए थे, मैं भी राह से भटका हुआ था। तो जब मैं दुनियावी दौड़ में, मसाबकत में उनके साथ शरीक होता था, तो वो मुझे अपना कॉम्पिटिटर समझकर वो अपने एल्बो का इस्तेमाल करते थे मुझ पर, तो मुझे तकलीफ होती थी, मैं नाकामी होती थी। तो उस नाकामी और तकलीफ से मैं जब बहुत बददिल होता था तो मैं रब की तरफ रजू करता था। तो जब ये वाकया बार बार पेश आता रहा मेरी जिंदगी में कि इनके हाथों में जिक उठाता रहा और बार बार मैं उस जिक उठाने के नतीजे में जो मेरे अंदर गम और दुख पैदा होता था, उसकी वजह से मैं अपने रब की तरफ मतवज्जो होता था बार बार। तो बार बार रब की तरफ मतवज्जो होने के नतीजे में मुझे राह हक मिल गई। تو یہ جو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں یہ ازراہ احسان مندی ہے کہ نہ وہ مجھے اتنا دکھ دیتے، نہ وہ مجھے اتنی تکلیف دیتے، نہ میں رب کی طرف رجوع کرتا اور نہ میں اس مقام تک آتا. تو جذبہ احسان مندی کے تحت ان کی دعا کرتا ہوں. اب یہ جو دکھ اور رنج ہیں، ناکامیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، لوگوں کے ہاتھوں مار پڑتی ہے انسان کو، دنیا کا جبر، یہ در حقیقت انسان کو راہ حق کی طرف لے کے جاتے ہیں. کہ جب انسان اتنا دکھی ہو جائے کہ اس کو برداشت کرنے کا چارہ نہ رہے اس کے اندر، تو پھر اس کو ایک ہی در دکھائی دیتا ہے، وہ ہے رب کا در. تو وہ پھر رب کی دہلیز پر سجدے کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو سیدھی راہ اللہ عطا کر دیتا ہے. ہم لوگ بیماری سے گھبراتے ہیں، بیمار ہو گئے تو بلائے بلائے پھرتے ہیں. جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار بیمار ہو گئے، آرام نہیں آ رہا تھا، تو آپ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور دعا ہی کر دیں کہ میری اس بیماری سے جان چھوٹ جائے، اس بیماری نے بہت تنگ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے گناہ اسی دنیا میں دھل جائیں سب؟ یہ بیماری تو تمہارے گناہوں کو دھو رہی ہے. تو ہم گھبراتے ہیں دکھ سے، رنج سے، الم سے، ناکامیوں سے، غربت سے، افلاس سے. اگر ہم یہ ذرا سا نظر دوڑا لیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو رب تعالی دنیا کا جبر، دنیا دکھ دیتی ہے، یہ رب تعالی نے سب سے زیادہ پیغمبروں کو عطا فرمائے ہیں. ہر پیغمبر ساری عمر انہیں ہی جھیلتا رہا. یہ ہمیں سیدھی راہ پہ رکھتے ہیں. یہ کسی صاحب نے خط لکھا ہے اور اس میں کچھ میری کہی بھی باتوں کے نتیجے میں کچھ سوال ان کے دل میں پیدا ہوئے ہیں، اس کا جواب انہوں نے مانگا ہے. لکھنا تو میرے لیے ممکن نہیں ہے، تو میں جواب دے دیتا ہوں. اس کے علیحدہ سے کیسٹ تیار کر کے ان کی اس ایڈریس پر جو ان کے لفافے پر لکھا تھا اس پر بھیج دیجئے. انہوں نے صاحبین راولپنڈی سے کوئی مرزا صاحب کہ تصوف کی شرعی حیثیت کیا ہے اور پہلا صوفی کون تھا؟ بابا فرید پر لکھی گئی کتاب صاحب کمال کی مصنف دیوان عظمت چشتی فریدی صاحب نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے صوفی نصرت ہاشم صاحب تھے، جن کا انتقال 777 عیسوی میں ہو گیا. کیا ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو ان سے پہلے کوئی صوفی نہیں تھا، تو یہ تو پھر بہت بات کی بات ہوئی. صوفی ہر دور میں رہے ہیں، ہر الہامی مذہب میں ہیں. یہ اصطلاحات در حقیقت ہم نے بعد میں بنا لی. صحابہ کا مقام اولیاء اکرام سے کہیں بلند تھا. جب ہم تصوف میں درجات کی بات کرتے ہیں تو صحابی ولی اللہ سے بہت اوپر آتا ہے. उनके वली अल्लाह होने में कोई शक नहीं, साहबियों के, उनके सूफी होने में कोई शक नहीं। फिर एक बड़ी दलील असाबे कहफ की है, असाबे सफा की है, हम जहां गलती खाते हैं हम तसव्वुफ को कोई एक फिका अलहदा से कोई फिका समझते हैं, हम शरीयत से हटकर कोई और राह इसको समझते हैं, ऐसा है नहीं। शरीयत पर चलना बहुत दुश्वार है कि कोई आदमी पूरी तरह शरीयत पर अमल कर ले। तो मैंने पहले भी किसी गुफ्तगु में यह अर्ज किया था कि अगर इंसान की तरबियत इन लाइंस पर हो जाए, क्योंकि शरीयत पर अमल इंसान से मुसलसल कुर्बानी का तकाजा करती है, तो वो बगैर तरबियत के इंसान इतनी बड़ी और मुसलसल कुर्बानी कर नहीं सकता। जिस तरह एक फौजी की पहले तरबियत की जाती है, फिर उसको मैदान जंग की सख्तियों और साबतों को बर्दाश्त करने के लिए आगे भेजा जाता है, उसके बगैर वो बगैर ट्रेनिंग के बर्दाश्त कर नहीं पाएगा। तो मुझ जैसे कमजोर लोग जो शरीयत की पाबंदी उस अंदाज में नहीं कर सकते कि हिम्मत हार जाते हैं, दुनियावी अगराज रास्ता काट जाती है, शैतान के बहकावे में आते हैं, नफ्स अम्मारा के तकाजे पूरे करने में लग जाते हैं और शरीयत से हटते चले जाते हैं, ऐसे लोगों की तरबियत इन लाइंस पर की जाती है कि वो रब ताला की मोहब्बत में मुब्तला हो जाए, और रब की मोहब्बत में उसके इश्क में मुब्तला होने के बाद उसके लिए इंतहाई आसान है कि वो शरीयत पर अमल कर ले। हमने उसको तसव्वुफ का नाम दे दिया और हमारे मखसूस मुआशरती बैकग्राउंड की वजह से इस राह में बहुत सी कंटेमिनेशंस शामिल हो गई। उन कंटेमिनेशंस ने इसको एक अजीब चीज बना के रख दिया। तो अब हम इससे धोखा खाते हैं कि ये तसव्वुफ क्या कोई एक अलहदा राह है? बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ शरीयत पर पूरी तरह अमल पैरा होने की तरबियत की बात है और कुछ नहीं। इसलिए इसकी शरई हैसियत या पहला सूफी क्या था वो इमेटीरियल है। दूसरा सवाल है कि क्या जो शख्स पाबंद सोम सलात न हो और बाशरा भी ना हो सूफी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। किसी शख्स के वली अल्लाह होने के लिए जरूरी है कि वो शरीयत और सुन्नत का सख्ती से पाबंदी वो करता हो। क्या किसी तीसरा सवाल इन्होंने किया है कि क्या किसी वली अल्लाह की रूह उनके वफात पा जाने के बाद किसी दूसरे शख्स में हलूल कर जाती है? रूहों के बारे में तो पढ़ा है कि इंसानी जिस्म निकलने के बाद उन्हें आलम बरजुख में रखा जाता है और कयामत के दिन उन्हें जिस्मों में लौटाया जाएगा, और उसी से मुतालिक दो वाकयात उन्होंने बताए हैं। साहब, ये कि किसी वली अल्लाह की रूह किसी और आदमी में हलूल कर जाए, ये इस्लामी अकायद के खिलाफ है। इस्लाम में रीइंकारनेशन, इसको हिंदू में मसला अवागोन कहते हैं गालबन, अगर मैं गलती नहीं कर रहा। री इनकारनेशन का कोई तस्वर नहीं है इस्लाम में। जो इंसान दुनिया से चला गया उसकी रूह आलम बरजुख में चली गई, वहां दो दर्जात हैं, वो अपने अमाल के मुताबिक उस रेस्पेक्टिव दर्जे में भेज दी जाती है। उन रूहों का ताल्लुक अपनी जाय दफन से कायम रहता है अल्लाह के हुक्म और इजाजत से। वो जहां रहती रही हैं उसके साथ ताल्लुक कायम रखते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं होता। ये रब ताला के हुक्म और उसकी मर्जी पर मुनहसर है कि किस रूह को किस हद तक वो राबता कायम रखने की इजाजत है। ये जो बाबा सैयद ताजुद्दीन औलिया का हवाला उन्होंने दिया है कि मैंने किसी एक जगह बाबा सैयद ताजुद्दीन औलिया का हवाला दिया, उन्हें शिकवा ये है कि वो 6 माह तक बाबा जी का नाम लेकर दुआ मांगते रहे, लेकिन कोई दुआ कबूल नहीं हुई। मैं इस सिलसिले में मिर्जा साहब ये अर्ज करना चाहूंगा कि रब अपनी मर्जी का खुद मालिक है। किसी शख्स में, ख्वाह वो किसी मकाम पर फाइज हो, पैगंबर ही क्यों ना हो, वो रब ताला को मजबूर नहीं कर सकता कुछ बात मानने पर। अल्लाह ताला की अपनी मसलहतें हैं, अल्लाह ताला इस कायनात को चलाता है और बहुत ही डेलिकेट बैलेंस पर कायम किए हुए है इस कायनात को। जो चीजें ग्रेटर प्लान्स में कहीं फिट नहीं होती फौरी तौर पर, तो रब ताला उन दुआओं को कबूल तो फरमा लेता है, लेकिन उसको पूरी देर में करता है। जब उसका वक्त आता है वो पूरी हो जाती है। इसलिए हमने अपनी जिंदगी में बारहा ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हमने आज एक दुआ मांगी, दिल को तस्कीन हो गई, तसल्ली हो गई, मेरी दुआ सुन ली गई, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। बाज़कात वो महीने में हो गई पूरी, बाज़कात साल, और बाज़कात कई कई साल के बाद, जबकि हमने वो दुआ मांगनी छोड़ दी थी, वो दुआ पूरी हो गई। तो ये रब का अपना निजाम है। बाबा सैयद ताजुद्दीन औलिया इसमें शक नहीं, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े वली अल्लाह गुजरे हैं अपने वक्त में, लेकिन अपने तमाम तर बुलंदी और मकाम के बावजूद उनमें ये हिम्मत नहीं है कि रब को कोई अपनी बात मनवा ले। वो रब को मजबूर नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो आप बाबा जी का नाम लेकर दुआ मांगते हैं, मैं इस सिलसिले में एक बड़ा मौद्दबाना और आजिजाना आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि रब से दुआ मांगिए उसे उसकी रहमत का वास्ता देकर। रब ताला से दुआ मांगिए उसको उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर। रब ताला से दुआ मांगिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उसके मुकर्रबीन का वास्ता देकर, नाम लेकर नहीं, वास्ता देकर। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो दुआएं सुन लेता है। लेकिन किसी का नाम लेकर दुआ न मांगिए, आप रब से दुआ मांगिए और उसका वास्ता दीजिए उसे उसकी रहमत का, उसके कुदरत वाला होने का, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके नेक बंदों का, और उससे अर्ज कीजिए कि आपकी दुआ कबूल फरमा ले। दुआओं के बारे में बड़ी सिंपल बात है, खुद रब ताला ने दो बातें कुरान पाक में कही कि एक तो रब ताला दुआएं सुनता है, दूसरा दुआएं कबूल फरमाता है। तो पूरी वो उस वक्त करेगा जब वो उसकी प्लान्स में फिट हो रही होगी, तो पूरी होने का मामला उसके अपने डिजाइन्स का है। और बाज़ुकात कुछ दुआएं हमारे फायदे में नहीं होती, हमारी अकल तो हमें राह दिखा रही होती है कि यही दुआ सही है, ये दुआ मांगो, लेकिन वो दुआ हमारे हक में नहीं होती। रब ताला चूंकि बहुत मेहरबान है, वो हमें मुश्किल में नहीं डालना चाहता, तो ऐसी दुआएं वो कबूल नहीं फरमाता, पूरी नहीं करता, बल्कि उसके एवज या तो कुछ और दुआएं पूरी कर देता है हमारी, या हमारे गुनाहों में कमी कर देता है। तो दुआ रंग हर हाल में लाती है। तो ये कहना कि साहब मैंने 6 महीने तक दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने उसे कबूल नहीं किया, ये कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं है। जब हमें ये चीज ज्यादा सताने लगे कि हम इतने अरसे से रब ताला से ये चीज मांग रहे हैं और वो अता नहीं हो रही, तो हम ये याद कर लें कि बिन मांगे हमें रब कितनी नेमतें अता फरमाता रहता है, हमारे बगैर रिक्वेस्ट किए हमारे कितने काम अज खुद वो कर देता है। तो अगर लातादात काम हमारे हो रहे हैं बगैर मांगे बगैर रिक्वेस्ट किए, तो एक अगर काम हमारा नहीं हो रहा तो यकीनन इसमें मसलियत है, वरना रब ताला जो इतने काम कर देता है वो एक क्यों नहीं करेगा। तो उस मसलियत को हम चैलेंज न करें, उसको उसकी मसलियत समझ के हंसी खुशी कबूल कर लें। उम्मीद है कि उसके नतीजे में हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। मेरा ख्याल है उजलत में मिर्जा साहब आपने एक खत लिखा है, आपकी तहरीर कुछ जगहों पर मुझे पढ़ी नहीं जा रही। ये जो आपने जिक्र किया कि 4 बातें पूछना थी, वो तहरीर आपकी पूरी तरह वाज़े नहीं है, और ये सवाल आपका जो पढ़ा जा रहा है उसमें एक चीज रिपीट हुई है जिसका जवाब मैंने अभी दिया। क्या रूहें फिरती रहती हैं और किसी और के अंदर हलूल कर जाती हैं और फिर खुद ही निकल जाती हैं? तो मैंने आपसे अर्ज किया कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया कि रूहों का आना जाना तो अकीदा वागौन से मुमासलत रखता है और ये हिंदू अकीदा है। तो मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि इस्लाम में रीइंकार्नेशन या आवागौन का कोई कंसेप्ट नहीं, मैंने अभी अर्ज किया है। तो आखिर में उन्होंने लिखा है कि शाह साहब अगर मेरी तकरीर में आपको कोई नागवारी महसूस हुई हो तो माफी चाहता हूं, मैं इतना छोटा इंसान हूं, इतना कमतर इंसान हूं कि अल्लाह के किसी बंदे की कोई बात कभी बुरी नहीं लगती। हर इंसान को हक है कि जो जी चाहे वो मुझे कह दे, ना तो कभी बुरी लगती है ना कभी नाराजगी पैदा होती किसी से मेरी। तो आप उसकी फिक्र ना कीजिए, दिल खोल कर जब भी आप कुछ कहना चाहें कह दीजिए। मेरे दुआ के मामलात यहाँ जहाँ से ब्लॉक तक महदूद हैं, जहाँ मेरी रिहाइश है वहाँ मेरी फैमिली लाइफ है या रोजगार के मामलात हैं। तो हफ्ते में 3 दिन मैं मुख्तस किए हुए हूँ खल्के खुदा के लिए, बाकी 4 दिन मेरे रोजगार के मामलात हैं, मेरी फैमिली है, उसके लिए मैं अल्लाह को जवाब दे हूँ। लास्ट संडे मैंने यही अर्ज की थी कि جو ہم پر چیزیں فرض ہیں اس کی جواب دہی ہماری ہوگی، ہمیں جواب دینا ہے اللہ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ ہم اپنے وہ فرائض پورے کیوں نہیں کر پائے۔ تو میں دعا کے معاملات کو اپنی رہائش پر نہیں ہینڈل کرتا، جو 3 دن مخصوص کیے ہیں خلق خدا کے لیے انہی میں کرتا ہوں۔ تو برائے کرم اگر آپ خط تحریر فرمائیں تو دعا ہی کے ایڈریس پہ تحریر کر دیجئے، میں انشاءاللہ اس کو جواب دے دوں گا۔ سامنے پھر میری حرکات پہ اور گفتگو پہ اعتراض فرمایا، حضور بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ قرض کر دیتا ہوں کہ میں ان پڑھ آدمی ہوں، علم اور تعلیم سے بالکل بے بہرا، تو کوتاہی ہوتی رہتی ہے جس پر صاحب علم لوگ میری گرفت کرتے ہیں اور مجھے چٹھی لکھ دیتی ہیں۔ انہوں نے بھی آپ کو یہ زحمت ہوئی کہ آپ کو میری گرفت کرنا پڑی، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں آپ سے، اور چونکہ آپ نے گرفت کی ہے میری تو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کا یہ لیٹر کا حصہ، ورنہ میں کبھی نہ پڑھتا اسے۔ تو آپ نے لکھا ہے کہ ایک دن آپ کا لیکچر سنا کہ حمزات کے بارے میں تھا، پھر کیا تھا آپ کے تمام لیکچر 105 تک سنے جس کی وجہ سے زندگی بدل گئی، اور جب آپ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا تو جواب ملا کہ میں تو پہلے ہی سے رجسٹر ہوں، لہذا مجھے وہاں جانا چاہیے، جبکہ آپ نے خود ہی کسی لیکچر میں فرمایا تھا کہ اگر مرشد صاحب اجازت دے دیں تو مرید دوسری جگہ سے بھی فیض حاصل کر سکتا ہے۔ تو اب انہوں نے واضح کر دیا کہ اپنے مرشد صاحب کے بارے میں کہ جناب مرشد صاحب مجھے اجازت دے چکے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کچھ کسی بھی شخص کو معلوم ہے، جتنا بھی علم کسی شخص کے پاس ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ علم اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچا دے کھلے دل سے، اس میں کنجوسی نہ کرے۔ آپ یقیناً میرے پاس تشریف لائے ہوں گے، مجھے یاد نہیں ہے، تو مجھے کشف میں دعا میں دکھائی دے گیا ہوگا کہ آپ پہلے سے بیعت ہیں، تو میں نے آپ سے یہ عرض کر دی ہوگی کہ حضور آپ تو پہلے ہی سے کہیں بیعت ہیں، اور روحانیت کا ایک اصول میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوگا کہ روحانیت میں ایک قانون یہ ہے کہ انسان جہاں بیعت کر لے پھر اس کو وہیں تک ہی رہنا چاہیے، دوسروں سے ملے، ان کی خدمت میں حاضر ہو، سلام عرض کر دے، ان کی خدمت کر دے، جو بھی ہمت ہے، جو سکت ہے، لیکن کسی اپنے مرشد کے علاوہ کسی دوسرے کو دعا کے لیے نہ کہے، مدد کے لیے نہ کہے، یہ اصول ہے۔ تو مجھ پر لازم ہے کہ اگر میرے علم میں آ جائے کہ میرے پاس تشریف لانے والے صاحب پہلے سے کہیں بیعت ہیں، تو میری انٹلیکچوئل آنیسٹی کا تقاضا یہ ہے کہ میں امیڈیٹلی ان صاحب سے یہ عرض کر دوں کہ حضور میں تو ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، لیکن آپ کا نقصان ہو جائے گا کہ آپ روحانیت کے ایک اسٹیبلشڈ اصول اور قانون کی خلاف ورزی کریں گے کہ اپنے مرشد صاحب کے علاوہ کسی سے مدد کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ہم وہ مجھ پر فرض ہے کہ میں آپ کو بچا لوں اس کوتاہی سے، میں نے یقیناً آپ کو منع کیا ہوگا، لیکن وہ انکار علم دینے سے نہیں تھا، آپ کو بچانے کے لیے تھا کہ آپ اپنے مرشد صاحب کے پاس تشریف لے جائیے۔ اب آپ نے اس خط کے ذریعے لکھ دیا کہ آپ نے آپ کے مرشد صاحب نے اجازت دے دی ہے، بسم اللہ سر آنکھوں پہ آپ ضرور تشریف لائیے۔ جو کچھ میں آپ کی خدمت کر سکا ضرور کر دوں گا، لیکن براہ کرم مجھ تک آنے سے پہلے ذہن میں ایک بات کلیئر کر لیجئے کہ میں امی مطلق ہوں، میں کوئی چیز نہیں جانتا، نہ میں کوئی روحانیت سے واقف ہوں، میں تو نیکی تک سے واقف نہیں ہوں کہ نیکی کہتے کس کو ہیں۔ تو آپ اگر اس تصور کے ساتھ آئیں گے کہ میں ایک بڑے کمتر آدمی کے پاس جا رہا ہوں، ایسا آدمی جو قطعی طور پر ان پڑھ ہے، تو پھر آپ کو دکھ نہیں ہوگا، مجھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ لیکن اگر آپ مجھے کوئی پڑھا لکھا انسان صاحب علم سمجھ کر آ گئے غلطی سے، تو سوائے مایوسی کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ میرا ان چیزوں سے واسطہ ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے مزید فرمایا ہے کہ میرے قبلہ مرشد صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سدرہ شریف میں رہائش پذیر ہیں، جبکہ میں لاہور کا رہائشی، اپنی تنخواہ لکھی ہے وہ نہیں میں پڑھوں گا، گزر بسر یہ بھی اس کو نہیں میں بیان کرتا۔ انہوں نے ہر مہینے یہاں تشریف لانے سے معذوری کا اظہار کیا ہے، حضور آپ میرے مہمان ہوں گے، خواہ مہینے میں ایک بار آئیں یا ہزار بار، آپ بطور مہمان یہاں تشریف لائیں گے اور آمد و رفت کا بوجھ آپ پر نہیں پڑے گا، آپ بے دھڑک تشریف لائیے، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف آپ اتنا اشارہ کر دیجئے کہ آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے تشریف لائے ہیں، تو آپ کی آمد و رفت آپ پر بوجھ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آگے انہوں نے خیر تعریف لکھ دی، وہ تو پڑھنے کی بات ہی نہیں ہے۔ اپنے مرشد صاحب کے بارے میں لکھا ہے، وہ ضرور میں پڑھ دوں گا کہ حضرت صاحب کے پاس کمال کی دنیا ہے، بے انتہا مرید ہیں، دل کی بات کہنا تو درکرار، ہاتھ ملانا دشوار ہوتا ہے۔ تو باقی میرے بارے میں لکھا اس کو چھوڑ دیجئے۔ جناب قادری صاحب، بات یہ ہے، ایک اور غلطی کر رہے ہیں، اپنے مرشد پر کبھی انگلی نہ اٹھائیے، یہ اپنی تباہی کو آواز دینے کی بات ہوتی ہے کہ علمی طور پر انسان تباہ ہو جائے۔ آپ کو سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو ایسے مرشد دیے ہیں جو صاحب علم ہیں اور ان کے بے انتہا مرید ہیں۔ وہ انسان ہیں، یقیناً ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ مریدوں کے ازدحام میں ہر شخص سے وہ ہاتھ ملا لیں اور ہر شخص سے تفصیل سے بات کر لیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ مرشد صاحب کتنے ہی صاحب کمال ولی ہوں، ہیں انسان، ان کے دن بھی 24 گھنٹے کا ہے، وہ اس 24 گھنٹے کو 48 گھنٹے تک پھیلا نہیں سکتے۔ بحیثیت انسان ان کے بہت سے بشری تقاضے ہیں، ان کی فیملی ہوگی جسے ٹائم دینا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے آپ کے مرشد صاحب بھی جواب دے ہیں رب کو کہ انہوں نے بیوی کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، بیوی کو وقت دیا یا نہیں دیا، ان کی اولاد ہوگی، اولاد کی تربیت کرنا، اس کو وقت دینا، اپنی اولاد کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا، یہ ہر ایک پر فرض ہے اور اس کے لیے وہ آنسر ہے اللہ تعالیٰ کو۔ روزگار کا سلسلہ، وہ آپ نے لکھا کہ بڑے صاحب کمال ہیں، तो साहिब कमाल लोग हाथ फैलाते नहीं किसी के सामने, उनका हाथ ऐसे नहीं जाता। यकीनन अपने रोजगार के लिए उन्हें तगुदो करनी पड़ती होगी, उसके लिए वक्त चाहिए। तो उसके बावजूद वो अपने अकीदतमंदों के लिए वक्त निकालते हैं। तो अपने अंदर शुक्रगुजारी के जज्बात पैदा कीजिए अपने मुर्शिद साहब के लिए कि वो कुर्बानी दे रहे हैं अपने उस वक्त की जिसमें वो आराम कर सकते हैं, जिसमें वो सो सकते हैं, लेकिन वो खलके खुदा के लिए दे रहे हैं टाइम। तो एतराज न कीजिए उन पर, यह आपको इल्मी तौर पर बर्बाद कर देगी ये चीज। किसी साहब ने मुझ तक लिखकर सलाम पहुंचाए हैं, वालेकुम अस्सलाम, और जवाबन इन हजरात को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए जिन्होंने आपके जरिए सलाम भेजा। ये किसी साहब ने अपना एक ख्वाब बयान किया, इसमें ख्वाब आपका बड़ा मुबारक है, अलबत्ता मेरे लिए एक परेशानी की बात है कि ये जो आपने ख्वाब का ये हिस्सा बताया, मैं फिक्रमंद हो गया हूँ अपनी टांगों की खैरियत के बारे में कि इसके बाद मैं आपकी गोद में बैठकर बहुत रोता हूँ। साहब अगर मेरी गोद में बैठ गए मेरी हड्डियों का क्या बनेगा? तो बहरहाल ये ख्वाब बड़ा मुबारक है, अल्लाह ताला आप इल्म में बरकत फरमाए और अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत फरमाए। ये ख्वाब आपका इन्हीं दो बातों की तरह इशारा कर रहा है, क्योंकि ये ख्वाब मेरे हवाले से आपने देखा, मैं इसलिए उसको पढ़ नहीं रहा, अगर बुरी बात होती तो मैं जरूर पढ़ देता। किसी साहब ने और सवाल भेजा है कि किसी बुजुर्ग को अपने दिल दिमाग से एकतरफा तौर पर अपना मुर्शिद मान लेने से क्या मुरीद और मुर्शिद का ताल्लुक कायम हो जाता है? यकीनन हो जाएगा, और इल्म का फ्लो भी शुरू हो जाता है। अगर जिस शख्स को आप मुर्शिद मान रहे हैं अपने दिल में वो वाकई साहिब इल्म है तो फिर इल्म का फ्लो भी शुरू हो जाएगा। दूसरा सवाल लिखा है कि क्या तमाम नफली इबादात मुर्शिद से मुलाकात के बाद छोड़ देनी चाहिए? नहीं, इबादात किसी कीमत पर नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि मुर्शिद तो आपको गाइड करेंगे आपके कि क्या क्या फर्ज इबादात तो बहरहाल आपको करना ही करना है, हर आदमी को करनी है। वो तो नमाज तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ नहीं हुई, तो किसी वली अल्लाह कोई क्या बेचता है बेचारा। नफली इबादात में वो आपको चैनलाइज कर देगा कि क्या आप नफली इबादात करें और क्या ना करें, वो आपकी रूह की कैफियत को सामने रख के चैनलाइज कर देगा। उसे नफली इबादात की जानी चाहिए अगर इंसान के पास वक्त है। अलबत्ता एक असूल बुनियादी याद रखिए कि हम नफल के लिए फर्ज को नहीं छोड़ सकते, फर्ज सब चीजों पर मुकद्दम है। ये एहतियात कर लीजिए कि ऐसा ना हो कि नफल के किस्से में हमारे फर्ज जाते रहें। दिल में किसी काम करने का ख्याल आए तो क्या मुर्शिद की तरफ से हुक्म होता है? आप इस किस्से में कभी ना पढ़िए कि मुर्शिद की तरफ से हुक्म है कि नहीं है। जो कुछ करने के लिए दिल में ख्याल आए सिर्फ ये देख लीजिए कि ये काम शरीयत और सुन्नत के मुताबिक है, किताब और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है। अगर मुताबिक है किताब और सुन्नत के, जरूर कर लीजिए, वरना उस ख्याल को झटक दीजिए, आपके मुर्शिद नाराज नहीं होंगे। अब आगे इन्होंने बहुत ही मुख्तसर एक चीज लिख दी, वो मेरी समझ में नहीं आई, नेक्स्ट संडे अगर डिटेल लिख देंगे, थोड़ा सा इलेबरेट कर दीजिए, तो मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। उन्होंने लिखा है, सवाल नंबर एक, सैयद अरशद फरीद हसनू, अब उसके बाद कुछ नहीं है। सवाल नंबर दो और तीन, अशबरी तमन्ना, अब ये सवाल, इसे मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट संडे थोड़ा सा लिख दीजिए कि इससे मुराद आपकी क्या है, आप क्या चाह रहे हैं कि सैयद अरशद फरीद हसन साहब का तारुफ कराऊं, उनके बारे में कुछ अर्ज करूं, या कुछ और है मतलब आपका, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट संडे कर दूंगा इंशाल्लाह। एक साहब में कुरान पाक में जो फरमाया गया है कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, बहुत सादा और सीधी बात रब ताला ने यह फरमाई है। अपने अमाल के लिए हर शख्स खुद जिम्मेदार है, और ये जो हमें मुख्तलिफ रवायात और हकायात पढ़ पढ़ के हमारे दिमाग में एक सवाल बैठ उठता है या एक यकीन पैदा हो गया है कि हमारे मुर्शिद हमें बचा के ले जाएंगे गुनाहों के बावजूद, ये वही चीज है। हर शख्स को खुद जवाब देना है अपने अमाल का, उसकी सजा और जजा सिर्फ उसी इंसान के लिए है जिसका अमाल नामा है, वो कोई दूसरा उसे शेयर नहीं कर सकेगा। एक और सवाल किसी ने लिखा है, बहुत ही बर्निंग इशू, हमारे इर्द गिर्द लोग दूसरों का हक मारकर सिफारिश खुशामद धोखे से आगे निकल जाते हैं, जो ये सब नहीं करता अल्लाह के डर से वो उस जगह तक नहीं पहुंचता। हम कोई राय कायम करने से पहले अगर मामलात को गहराई से देख लें तो चीजें बड़ी वाजे हो जाती हैं खुद हम पर। ये बिल्कुल सही आपने कहा कि दुनियावी तौर पर ऐसा शख्स वक्ती तौर पर तो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है हमें, लेकिन अगर उसका अंजाम देखें आप, वो हमेशा गलत होता है। दूसरी बात यह है अहम क्या चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक जमाने में जब मैं प्रिंस आगा खान के अदारे में काम कर रहा था, तो वहां जो मेरे सीनियर्स थे उनसे जब कभी बात होती थी तो वो एक चीज पर जोर दिया करते थे कि अदारे की गुडविल नहीं कभी डैमेज होनी चाहिए, अगर माली लॉस होता है वो कर दीजिए लेकिन गुडविल बचा लीजिए आप। वो जवानी का इब्तदाई हिस्सा था, कुछ बातें समझ में आती थी कुछ नहीं आती थी, वो आज भी नहीं समझ आती। तो कभी मैं ये नहीं समझा कि माली लॉस हो जाने दें कोई बात नहीं है, अदारे की गुडविल नहीं खराब होनी चाहिए, उसका इमेज नहीं खराब होना चाहिए। तो बाद में वक्त ने ये बात वाजे कर दी कि वो शख्स जो दिवालिया हो गए लेकिन उनकी गुडविल कायम थी, वो दोबारा खड़े हो गए अपनी उस साख की बुनियाद पर, वो दोबारा से खड़े हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें फिर अरूज दे दिया, क्योंकि इन लोगों को मैंने देखा कि अगर इन्होंने किसी से वादा कर लिया है, और मेरे सामने बहुत से वाकयात हुए ये कि ये वादा कर लिया कि आप आके 10 तारीख को पेमेंट अपनी ले जाएं, वो इनसे बंदोबस्त नहीं हुआ तो इन्होंने अपनी कार, अपना मकान बड़ी खुश दिली से कम कीमत पर बेच के वो अमाउंट उसको वादे पर दे दी। लेकिन फिर हमने उनको देखा उठते हुए जमीन से, बड़े इत्मीनान से खड़े हो गए। इस गुडविल को हम आसान लफ्जों में इज्जत कह सकते हैं। तो कभी अपने चारों तरफ गौर कीजिए कि वो लोग जिनके पास टन्स ऑफ मनी है, दौलत के अंबार लगे हैं, खुद उन्हें याद नहीं कि कहां कहां कितनी दौलत हमारी पड़ी है, लेकिन इस दौलत के बावजूद उनके पास इज्जत नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरी दौर में रह रहे हैं, तो ये मिसालें जमहूरियत की बरकत के नतीजे में हमारे चारों तरफ फैली दिखाई देंगी कि दौलत बेपनाह है लोगों के पास, लेकिन इज्जत नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इंसान को इज्जत ज्यादा अच्छी लगती है या दौलत के अंबार। किसी जमाने में एक साहब से मैंने कहा कि साहब, आपके पास अल्लाह ने इतनी दौलत आपको अता कर दी है कि खुद आपको याद नहीं कि दुनिया पूरी में कहां कहां फैली है दौलत, और कितनी कितनी है दौलत। आप मुझे ये फरमाइए कि एक वक्त में आप सिर्फ एक ही सूट पहन सकते हैं, और उसकी कीमत की भी एक आखिरी हद है, उससे ज्यादा कीमती हो ही नहीं सकता वो। तो एक मतवसत दर्जे का इंसान जो है, मतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाला, वो भी वही सूट पहन लेता है जो सूट आपने पहना है। मैं ऐसे बीसियों लोगों को जानता हूं जो यही ब्रांड पहनते हैं। जो शू आपने पहना हुआ है, मैं बहुत लोगों को, मेरे दोस्तों में बहुत ऐसे लोग हैं जो 8,000-8,500 पाउंड, जो पाकिस्तानी हिसाब से 13 लाख रुपया बन गया, ये जूते पहनते हैं। मेरे दोस्त बहुत हैं इर्द गिर्द मेरे, तो एक वक्त में एक ही जूता पहन सकते हैं आप, एक वक्त में एक ही घड़ी आप पहनेंगे, एक ही शर्ट पहन सकते हैं, और एक वक्त में खाना उतना ही खा सकते हैं जितना आपके पेट में समा जाए। ज्यादा से ज्यादा तंदूर की एक रोटी बस, और क्या खाएंगे आप। तो जो कुछ आपकी खुराक की टोटल कीमत है, वो एक वक्त में बमुश्किल 500 रुपया बनेगी, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती किसी तरह भी। एक वक्त में आप ज्यादा 6-6.5 लाख रुपए का सूट पहन लेंगे, इससे ज्यादा कीमती सूट मेरे इलम में नहीं कहीं। जूता आप 8,500 पाउंड का पहन लेंगे, बाकी सब तो बेकार है दौलत। एक वक्त में एक कार में बैठ सकते हैं आप, एक वक्त में 4 कारों में तो बैठ ही नहीं सकते। तो दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी ले आइए आप, एक होगी एक वक्त में, तो फिर ये सब क्यों। तो सवाल ये है कि जो शख्स एल्बो इस्तेमाल करता है, जैसे आपने मेंशन किया, सिफारिश, खुशामद, धोखा, या एल्बो इस्तेमाल करना कहलाती है ये चीज, कोहनी के जोर पे आगे बढ़ते हैं आप, किस लिए? अलबत्ता ये डिपेंड करता है कि हमारे नजदीक अहम क्या है, इज्जत ये दौलत। तो अगर कहीं अल्लाह हमें अकल अता फरमा दे, समझ अता फरमा दे, सही और गलत की तमीज अता फरमा दे, तो फिर हर समझदार इंसान इज्जत के लिए ऑप्ट करेगा कि इज्जत मिल जाए। तो दौलत खुद ब खुद चली आती है, लेकिन दौलत मिलने से इज्जत खुद ब खुद कभी नहीं आती, इज्जत से आ जाएगी। तो ऐसे लोग जो एल्बो का इस्तेमाल करते हैं, कोहनी का इस्तेमाल करते हैं आगे बढ़ने के लिए, उनको इज्जत नहीं मिलती है। इज्जत उन्हीं लोगों को मिलती है जो अल्लाह की बताई हुई रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चलते हैं, और बिल आखिर दौलत भी उन्हीं का मुकद्दर हो जाती है। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी अगली मुलाकात आपसे इतवार को होगी, तो उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।